તારીખ 26/3/1990 શ્રી તત્વાનુશીલનમાં પર્યાયમાં એકત્વ વિષય ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 3
તત્વાનુશીલન પૃષ્ઠ 18 मिथ्या दृष्टि के कैसी कैसी पर्याय बुद्धि से भूल होती है उसका विवरण है। पर्याय में एकत्व ये प्रकरण का शीर्षक है। पर्याय में एकत्व को पर्याय बुद्धि को या मिथ्या दृष्टि को हो, तीनों एक बात है। द्रव्य दृष्टि को हो, त्रिकाली द्रव्य स्वभाव में एकत्व को हो और सम्यक दृष्टि को हो, वो एक ही बात है। वो पैराग्राफ से फिर से शुरू करें। किसी जीव को स्वाध्याय के निमित्त ज्ञान का क्षोभ बढ़ता है और प्राय साधारणतया ऐसा ही होता है कि मनुष्य स्वाध्याय बढ़ाता है, साथ साथ उसका ज्ञान का क्षोभ भी बढ़ता जाता है। वहाँ धारणा ज्ञान में और या क्षोभसम ज्ञान में रस आने से अथवा न्याय आदि की समझ होने से प्रसन्नता होती है कि पहले ये न्याय हमें नहीं समझ में आता था, जब ये समझ में आता है तो प्रसन्नता होती है, उसमें भी रस आता है। प्रसन्नता के काल में रस आता है। जैसे भोजन अच्छा होवे तो प्रसन्नता होती है, तो उसमें रस आता है, उस वक्त भी रस आता है। सरस अन्य प्रसन्न भाव होता है, भोजन बहुत बढ़िया है, उसमें रस आता है। और ये मन का, जैसे ये शरीर की पुष्टि हुई, इसमें मनोरंजन की पुष्टि होती है, तो उसमें रस आने से या न्याय आदि समझाने से प्रसन्नता होती है। और उसमें ठीक ना होता है, अच्छा हुआ, वहाँ वजन चला जाता है, जोर आता है, तो उसमें अटकने का कारण होता है। अभी बात से प्रसन्नता है, उसमें गहराई में जाना चाहिए कि इस बात की गहराई है या बात का विषय है। मैंने वाचक का जो वाच्य है उसके अवलंबन से प्रसन्नता है। प्रसन्नता दो तरह की होती है, सुनने वाले को, पढ़ने वाले को, विचारने वाले को। कि एक नई बात, अच्छी बात सुनने में आई, इसकी प्रसन्नता है, या इस बात का जो विषय है इसके, इसलिए इसमें आत्महित का कोई कारण है, मैंने उसका वाच्य तक पहुंचकर अपने हित के विषय में प्रसन्नता है। बस ये दो बात का अपने को बराबर भेद मालूम होना चाहिए। जो बात की प्रसन्नता है तो बात पुद्गलात्मक है, ये पुद्गल के आश्रय से हुई प्रसन्नता हुई, जैसे भोजन के परमाणु का पुद्गल के आश्रय से प्रसन्नता होती है, वैसे ही ये भी पुद्गल के आश्रय से हुई। क्या फर्क रहा उसमें? प्रसन्नता जीव के स्वरूप और स्वभाव के आश्रित है या पुद्गल के आश्रित है? बस पदार्थ तो दो है, जाति के दो जाति के पदार्थ हैं विश्व में, एक चैतन्य, और चैतन्य में भी अपना चैतन्य देखना है, दूसरा चैतन्य से भी अपना कोई संबंध नहीं भिन्न पदार्थ होने से। तो अपना चैतन्य आश्रय से जो प्रसन्नता होवे वो तो ठीक है, सही है, होनी चाहिए भी, और पुद्गल के आश्रय से होती है तो ये तो पंचेंद्रिय के विषय जो हैं सभी पुद्गल है, मनोरंजन होता है जीव को, उसमें जीव का हित नहीं है किंतु अहित है, हित तो नहीं है बल्कि अहित है, यही कारण है।
स्वभाव का जिसके रस नहीं है,
स्वभाव का रस नहीं है तो अवश्य राग का रस है या राग की बातों का रस है। वीतराग मार्ग में राग का निषेध है और राग के विषयभूत जितने भी पुद्गल हैं उनका भी निषेध है, क्योंकि इससे जीव के परिणाम मलिन होते हैं, दुखित होते हैं, और ये अपने चैतन्य स्वभाव से विपरीत जाति के परिणाम है, इसलिए वो अशांति के कारण होने से उनको अहित के कारण बताए गए। और अहित में प्रसन्नता आना, ये बात कहाँ की समझदारी की है? हित में तो प्रसन्नता होवे ठीक बात है, लेकिन अहित में भी प्रसन्नता होवे ये तो केवल मूर्खता ही है, समझदारी तो नहीं है लेकिन मूर्खता है कि जीव अपने का अहित करे, जिस परिणाम से वही परिणाम में वो प्रसन्न रहे।
होता है
तो उसी को ही अज्ञान कहते हैं, जो हित नहीं है उसको हित समझे उसी को अज्ञान कहें, जो धर्म नहीं है उसको धर्म समझे उसी को अज्ञान कहें, अज्ञान को या विपरीत ज्ञान को, उसको मिटाने के लिए ये स्वाध्याय आदि चर्चा है। तो धारणा ज्ञान में रस आवे, मैंने बहिर्लक्षी ज्ञान में की धारणा में रस आवे, राग में रस आवे और राग के विषय भूत पुद्गल में रस आवे, तीनों एक वर्ग में ले लिया। पुद्गल तो परद्रव है, राग अपनी विकृत पर्याय है, और परलक्षी ज्ञान वो ज्ञान की विभाविक पर्याय है, वो चारित्र की राग है सो चारित्र की विभाविक पर्याय है, और परलक्षी ज्ञान है और वो ज्ञान के विभाविक पर्याय है। विभाव का निषेध है स्वभाव के आदर में, स्वभाव के आदर करते हैं तो उसमें विभाव का निषेध आएगा ही आएगा। अथवा पूर्व के असमाधान रूप समझ से उत्पन्न हुई आकुलता, इसका समाधान होने से, इस आकुलता का मंद पड़ा होने से, उसकी मंदता होने से, उस ज्ञान, उस आकुलता की, दुख की मंदता को ज्ञान का फल जानकर अटकना होना है, होता है। ये चर्चा कल चली थी कि हम मुमुक्षु लोग चर्चा करते हैं तो ऐसी चर्चा करते हैं कि गुरुदेव ने हमें समझाया, इसलिए अब हमें अनेक प्रकार के प्रतिकूल आकुलता उपजाने वाले ऐसे प्रसंगों में हमें थोड़ा समाधान रहता है, अगर इतना नहीं समझते तो बहुत दुख हो जाता, अभी थोड़ा दुख कम होता है, ये गुरुदेव की कृपा है। विनय से ऐसे कहें कि गुरुदेव की कृपा है, भीतर में ये समझे कि हमारी कुछ समझ है, हमें कुछ ज्ञान हुआ है, इसलिए हमें दुख कम हुआ है, ज्ञान का फल हुआ हमको मिला है, इसलिए इतना फायदा हुआ है, इतना लाभ हुआ है, ये भी धोखे में रहने की बात है।
बहुत सी बात ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते, अगर समझ में आ जाते खुशी तो होगी जरूर।
समझ में आने मात्र से खुशी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस समझ का परिणमन होवे वहां तक पहुंचने की, इस वक्त जब समझ होवे तब समझ का परिणाम होवे वहां तक पहुंचने के, इस वक्त एक नई जिज्ञासा, एक नई भावना उत्पन्न होनी चाहिए। तो ये नई भावना उत्पन्न नहीं होती है और प्रसन्नता से वहीं अटकना होता है कि चलो हमने ये बात पहले नहीं समझ में आई थी, अब बराबर समझ में आ गई, तो उसमें प्रसन्नता आती है, रस होता है, रस आता है, वहां अटकना हो जाएगा, अटकना हो जाए, अटकना हो जाएगा मतलब कि वहां से विकास होने का जो प्रक्रम है, प्रक्रिया है, वो बंद हो जाएगी। जब विकास होने की प्रक्रिया बंद होती है तब आगे के काल में जीव को फिर पीछे जाने की प्रक्रिया चालू होती है। यही कारण है कि जीव का परिणाम एक चाल है, वो हमेशा चलता ही रहता है, चले बिना जीव रहता नहीं परिणाम में, और दो ही दिशा है, या तो ऊंधी दिशा में चले या तो सूंधी दिशा में चले, दो में से एक दिशा में तो चलेगा ही चलेगा, चलने का तो उसका बंद रहता नहीं, यही कारण है। इसलिए अटकना है वो नुकसान का कारण है। और इसलिए स्वभाव का अंतर प्रयास का अभाव वर्तता है, विकास नहीं होता, इसका यही कारण है कि वो ज्ञान, वो कषाई की मंदता हुई, दुख की मंदता हुई, न्यायादि से उसका समाधान कर लिया, उसमें प्रसन्नता हो गई, अटकना हुआ तो वहां से जो प्रश्न चलना चाहिए था वो नहीं चलेगा। अध्यात्म का ऐसा सिद्धांत है, ये आध्यात्मिक सिद्धांत है कि सही ज्ञान होने से पुरुषार्थ की उत्पत्ति सहज होवे। ये ज्ञान और पुरुषार्थ के बीच में निमित्त नैमित्तिक, अनिवार्य निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कितने एक निमित्त नैमित्तिक संबंध अनिवार्य होते हैं, कितने एक निवार्य होते हैं, दो प्रकार के निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, ठीक। जैसे कि जीव को कर्म का उदय आवे, मानो लोभ प्रकृति का उदय आया, तो जीव लोभ करे तब तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अगर स्वतंत्र रूप से जीव लोभ नहीं करे तो निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है, वो अनिवार्य नहीं है कि उसको लोभ करना ही पड़े। लेकिन जीव का लोभ का परिणाम होवे तो लोभ की प्रकृति का बंधन होना, निबंधन होना, यह अनिवार्य है, उसको निवारण नहीं कर सकते। डिग्री टू डिग्री बंधन होगा, जितनी मात्रा में लोभ की प्रकृति का रस आएगा उतनी मात्रा में अनुभव प्रकृति प्रदेश स्थिति का बंध हो जाएगा, वो अनिवार्य है, वन वे ट्रैफिक है, एक साइड का, दूसरी साइड में जीव स्वतंत्र है। वैसे सही ज्ञान में पुरुषार्थ होना अनिवार्य है। जिस ज्ञान के निमित्त से पुरुषार्थ नहीं होवे वो ज्ञानी नहीं, उसको ज्ञान नहीं कहते हैं, उसको अज्ञान कहते हैं, उसको विभाविक ज्ञान कहते हैं, क्योंकि स्वभाव में तो स्वाभाविक कार्य होवे ही, विभाव में स्वाभाविक कार्य नहीं हो पाता, नहीं हो सकता। ये थोड़ी बात नहीं निकली, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी निवार्य भी है अनिवार्य भी है। तो जिस सूक्ष्म ज्ञान से हम समझते हैं, वो समझ से भावना होनी, रुचि होना, स्वभाव की स्वभाव समझते हैं उस ज्ञान से, स्वभाव की भावना होना, स्वरूप की प्राप्ति की भावना होना, उसकी रुचि होना, उसका पुरुषार्थ होना, ये स्वाभाविक है। जब तो ज्ञान भी सही और उसका फल भी सही, और अगर नहीं हुआ तो ये ज्ञान सही नहीं है, ये वैभाविक ज्ञान है। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, हर एक गुण के पर्याय में दो प्रकार पड़ते हैं, स्वभाव और विभाव, विकृत और अविकृत। तो यहाँ धोखा होता है कि ज्ञान का फल से हमें शांति हुई, शांति नहीं हुई, ऐसा धोखा में जीव रह जाता है। और उसका जो है स्वभाव का अंतर प्रयास है, स्वभाव के लिए अंतर्मुख का जो प्रयत्न है, वो तो उसको बंद हो जाता है, उसका अभाव हो जाता है। और उसका अंतर्मुख का प्रयास होता नहीं है, फिर भी उसको उसकी चिंता नहीं होती है, क्योंकि उसको तो ये हुआ कि मैंने तो ज्ञान किया, पहले इस अस्त्र का, इस गाथा का अर्थ न्याय में नहीं समझता था, अब मुझे कुछ समझ में आया तो रस आया थोड़ा, और अंतर प्रयास बंद हो गया, चालू नहीं हुआ, तो उसका ख्याल नहीं गया, उस ख्याल नहीं गया तो उसकी चिंता भी नहीं। कह रहे मैं समझा, मुझे समझ में आया, और मेरा पुरुषार्थ नहीं उठता है, क्या कारण है, कोई गड़बड़ है अंदर में। जैसे मरीज को जो रोग है उसी रोग की बिल्कुल दवाई देवे और फिर रोग नहीं मटे, तो फिर कोई डीप इन्वेस्टिगेशन में जाना पड़ता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जाना पड़ता है कि बात क्या है, ये खांसी हुई है, खांसी की हम दवाई लेते हैं, खांसी मिटती है, महीना हुआ, दो महीना हुआ, चार महीना हुआ, छः महीना हुआ, छः छः महीने से दवाई खाई, खांसी नहीं मिटती है, बात क्या है। कोई तलाश किया तो ट्यूबरक्यूलोसिस उसमें हुआ है, ऐसा लगा कि भाई दवा तो ट्यूबरक्यूलोसिस की होती नहीं है, जब टीबी नहीं मिटेगा वहाँ तक खांसी मिटने वाली नहीं। उसकी जांच में गहराई में गए बिना और उसका सही निदान किए बिना सही इलाज भी होगा नहीं, ऐसा ये जीव का भव रोग है, परिभ्रमण का भव का रोग है, उसकी गहराई में जाना पड़ता है कि कारण क्या है। हम शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, वितराग देव गुरु शास्त्र की पूजन वंदना आदि करते हैं, कुदेव आदि को मानते नहीं, वितराग देव के अलावा किसी को हम स्वीकारते नहीं, वो फिर भी हमें जो वितरागता होनी चाहिए, मोक्ष मार्ग होना चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, क्यों नहीं होता है, तो फिर उसकी गहराई में जाना पड़ता है। यही कारण है कि स्वभाव का प्रयास होता नहीं, समझ में आया, ठीक हो गया, काम हो गया ऐसा समझ लेते हैं, ज्ञान हो गया ऐसा समझ लेते हैं, और पुरुषार्थ चलता नहीं है, उसकी चिंता भी होती नहीं है। प्राय जीव को इसकी चिंता नहीं होती है, इसकी चिंता होवे तो क्यों नहीं पुरुषार्थ चला, इसकी गहराई में वो अवश्य जाएगा। तो चिंता नहीं होती है तो क्या है कि पढ़ता रहता है हमेशा, सुनता रहता है, और कई बातें और समझ में आ जाती है, और उसको रस आता है कि चलो बहुत सी बातें समझ में आई, और भी बहुत सी बातें, जितना जितनी हमारे पठन बढ़ेगा, शास्त्र का स्वाध्याय बढ़ेगा, हमको बहुत सी नई नई बातें समझ में आती रहेगी। जीव को एक कुतूहल वृत्ति है नई नई बातें समझने का, नई नई चीजें देखने का, नई नई चीजें सुनने का, नवीनता का उनको जो है कुतूहल हमेशा बना रहता है। और विश्व में कहाँ कहाँ कितनी कितनी नवीनता है, उसके लिए उसकी जो वृत्ति है उसमें आकांक्षा, बनी रहती है। इस आकांक्षा के वश जीव के परिणाम बाहर बाहिक दिशा में, बाहर की दिशा में जोर करते हैं, वेग पकड़ते हैं, और जितनी बाह्य प्रवृत्ति में जोर आता है उतनी उसकी अंतर प्रवृत्ति से जीव दूर हो जाता है, अंतर्मुख होने से वो दूर हो जाता है। ये इसकी ऊंधी चाल है। भीतर की बात में भी नई बात का व्यामोह है। कौन सी नई बात आती है? हमने एक मुमुक्षु ने प्रश्न पूछा था बहुत साल पहले की बात है कि भाई साहब तीर्थंकर देव की वाणी छूटती है और गणधर देव इनकी सभा में सुनते हैं। गणधर देव का सामर्थ्य तो अंतर्मुहूर्त में 12 अंग की 11 अंग और 14 पूर्व की रचना करने का होता है, उतना सूक्ष्म तो प्रारंभ से ही उनका हो जाता है। अब तीर्थंकर देव की वाणी में उनको कौन सी नई बात सुनने को मिलती होगी? और कोई नई बात उसके लिए नहीं होती तो उनको रस भी कैसे आता होगा सुनने में? जैसे गुरुदेव की बात हम बार बार सुनते रहे कि एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य से भिन्नता है, राग से भी स्वभाव की भिन्नता है, और जैसे स्वभाव उपादेय होने से पुण्य पाप दोनों ही हैं, तो ऐसे दो तीन बातें हम सैकड़ों वक्त सुनते हैं। फिर वही बात सुन सुन करके नई बात का व्यामोह होने से और नई बात नहीं मिलती होने से फिर उसमें रस नहीं आता है कि ठीक है चलो, तो गुरुदेव हमेश की जो चीज गाते हैं वही गाते रहते हैं, ऐसा कईयों को हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? फिर कोई नींद लेने लगते हैं, फिर कोई का उधर उधर ध्यान जाता रहता है, आज कौन आया है, आज कौन नहीं आया है, नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है। फिर वृत्ति जो है वो स्थिर रहने वाली नहीं है। जब रस नहीं हुआ सुनने में तो और उधर 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 भटकेगी, ये परिस्थिति होती है कि नहीं होती? तो ये नई बात का व्यामोह जो है ये पुद्गल की रुचि है, जिसको कौतूहल वृत्ति कहते हैं। रुचि के प्रकरण में वो बात दिया है इसी ग्रंथ में, रुचि का प्रकरण लिखा है वहाँ, कि ये ऐसी जो बाह्य पदार्थ की बाह्य चीजें की कौतूहल वृत्ति है वो पुद्गल संबंधित वृत्ति है, पुद्गल की रुचि वाली वृत्ति है। आत्मरुचि में ऐसा नहीं होता, वो आत्मरुचि का प्रकरण है। आत्मरुचि में ऐसी बात है कि आत्मा की रुचि वालों को आत्मा की ही बात जितनी बार ज्यादा मिले, मैंने भगवान की वाणी में गंधर्व देव को बार बार स्वभाव की बात मिलती है, स्वरूप की आत्मस्वरूप की बात मिलती है और उनको बहुत रुचि होती है, बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत उनको पुष्टि मिलती है अपनी रुचि को। और संसार में भी ऐसा होता है कि जिसको संगीत की रुचि है बार बार वही गीत सुनेगा, जिसको सुगंध की रुचि है बार बार वो सुगंध के विषय का प्रयोग करेगा, जिसको जिसको जैसी रुचि है उसमें उसको बार बार मिलने से रुचि की पुष्टि होती है, रुचि बढ़ती है। और आत्मा का जो विषय है वो बार बार सुनने से वो का वो लगता है, उसका मतलब ये है कि उनको रुचि नहीं है, आत्मा की रुचि नहीं है, तो पुद्गल की रुचि है। रुचि दो की होती है, या जीव की या अजीव की, तीसरा पदार्थ तो है ही नहीं जाति का, विश्व में तीसरी जाति का तो कोई पदार्थ ही नहीं है। तो यही कारण से उनको नुकसान होता है। यहाँ चिंता नहीं होती है परंतु भ्रम से चलती पर्याय के प्रकार को दृढ़ करने लगते हैं, कि चलो अपना जो बार बार समझने का जो रस आता है तो नई नई बात समझे और उसी दिशा में अपनों अपनों समय और शक्ति का प्रयोग करते रहें, तो उसमें जो पर्याय में वो संतुष्ट हुआ है, जो पर्याय में उसको अच्छा लगा है, उसमें एकत्व हो रहा है अनादि से, उसी एकत्व को दृढ़ करता है और वृद्धिगत करता है। तो उसमें मिथ्या तो वृद्धिगत होता है। स्वाध्याय करे, नए नए न्याय समझे, दर्शन चारित्र मोह मंद होवे, राग मंद होवे, समाधान होवे इसलिए, और दर्शन मोह दृढ़ होवे, ये गड़बड़ हो जाती है। नहीं, आत्महित पर जिसकी दृष्टि है उसको तो आत्मा का हित की बात कौन सी आती है, कैसी आती है, और इस बात को मैं कैसे अंतर में प्रयोग करूं, वहां तक उसकी नजर रहती है। तो उसको तो आत्महित का लोभ है, वो तो अच्छा ही है, लेकिन आत्महित की बात तो गौण हो जावे, और नई नई बात सुनने से और उसकी धारणा होने से और इससे कुछ थोड़ा बहुत समाधान हो जाने से कषाय की मंदता की शांति होवे और उसमें ठीक पड़ा माने कि ये ज्ञान का फल मिला, तो ये नुकसान का कारण हो जाएगा। उसमें पर्याय का एकत्व मैंने, पर्याय का मिथ्यात्म जो है एकत्व से होने वाला, उसमें दृढ़ता हो जाएगी। ऐसा विषय जुड़ा सूक्ष्म है, ये मिथ्यात्व का विषय सूक्ष्म है। कैसे कैसे मिथ्यात्व होता है मुमुक्षु दशा में भी, और मिथ्यात्व गलना चाहिए, मिथ्यात्व की शक्ति निसत्व होनी चाहिए, बजाय ऐसे होने से वो दृढ़ हो जावे, ये तो विपरीत बात हो गई ना। ऐसे एक तो ये जो चौथा भंग है ये पर्याय में संतुष्टपणा का है। इस प्रकार से भी जीव को संतुष्टपणा होता है कि चलो मुझे समझ में आया, अच्छा हुआ, पहले नहीं समझ में आया था, अभी समझ में आया, और इससे समाधान भी कर लेंगे, कभी कभी समाधान करने से हमारा दुख भी कम हो जाएगा। ये संतुष्टपणा पर्याय का एकत्व को बढ़ाता है। पांचवा है पर्याय का अवलंबन। अवलंबन मैंने आश्रय, तो पर्याय का आश्रय किस किस तरह से जीव करता है, कैसे कैसे कर लेता है। आश्रय तो द्रव्य स्वभाव का, ध्रुव तत्व का करने का विधान है, फरमान है जिनेन्द्र देव का, श्री गुरु का। तो उसको भूल करके, मिथ्यात्व है सो भूल है, उसको भूल करके, भूल से पर्याय का अनादि से आश्रय है, वो भी बना रहता है और स्वाध्याय करके बना रहता है। मुमुक्षों की प्रक्रिया में, मुमुक्षों की क्रियाओं में ये और बढ़ जाता है। ये भूल मिटाने के बजाय भूल बढ़ जाती है तो कैसे बढ़ जाती है, ये अवलंबन का विषय इधर लिया है। त्रिकाली परम स्वभाव का अवलंबन लेने योग्य है। अवलंबन का विषय तो तीनों काल एक ही है, इस सिद्धांत में कोई अपवाद नहीं। सिद्धांत भी दो तरह के होते हैं, किसी सिद्धांत के साथ अपवाद होते हैं, किसी सिद्धांत में अपवाद नहीं रहते हैं। ऐसे दो तरह के सिद्धांत होते हैं, जो अपवाद के योग्य हैं वहाँ उसको इस तरह से स्वीकार करना चाहिए, जिसका अपवाद नहीं होता है वहाँ अपवाद को स्वीकार नहीं करना चाहिए। वहाँ अपवाद को स्वीकार करने से सिद्धांत टूट जाएगा, और जहाँ अपवाद का स्वीकार है वहाँ सिद्धांत को संतुलन रखने से, सिद्धांतिक विषय को संतुलित रखने से या सिद्धांत को बचाने से, बचाने के कारण से, और सिद्धांत नहीं टूटे यही कारण से उस अपवाद को स्वीकार किया गया है। स्वीकार का भी यही कारण है। जैसे दृष्टांत लेवे हम, कि केवल वितरागता उपादेय है, ये पर्यायाश्रित सिद्धांत है, और परिपूर्ण वितरागता ही उपादेय है, यही हमारा सिद्धांत है वितराग मार्ग का। फिर भी वितराग मार्ग में जो विचरते हैं ऐसे धर्मात्मा को अपनी अपनी भूमिका का राग रूप व्यवहार होता है, ये अपवाद है। ये राग रूप व्यवहार है वो अपवाद है, और इस अपवाद का मोक्ष मार्ग में स्वीकार किया गया है। लेकिन इसलिए निश्चय व्यवहार युक्त मोक्ष मार्ग कहने में आता है, तो वहां आपत्ति नहीं है, इस व्यवहार को स्वीकार करने से कोई आपत्ति नहीं है, सिद्धांत टूटता नहीं है। और जो धर्मात्मा खुद ही है वो व्यवहार मार्ग में आते हैं तो भी उसकी वितरागता में हानि नहीं होती। मैंने उसकी जो इस भूमिका की जो परिणति है, चौथा गुण स्थान वाला हो या पंचम गुण स्थान वाला, हुए प्रतिपालन कहते हैं उसको, वो अपनी भूमिका को निभाते हैं बराबर, वो भूमिका को त्याग नहीं करते, इसलिए वहां सिद्धांत वितरागता का नहीं टूटता। लेकिन आश्रय का, जहां द्रव्य स्वभाव के आश्रय का सिद्धांत है कि एक त्रिकाली स्वभाव का ही आश्रय होना चाहिए, वहां अपवाद नहीं। वहां तो केवल ज्ञान पर्याय का भी आश्रय नहीं, सम्यक दर्शन के पर्याय का भी आश्रय, मुनि दशा के पर्याय का भी आश्रय नहीं है, और वहां जो आश्रय बदले तो सिद्धांत टूट जाता है, और जो दशा है वो मिथ्या अज्ञान की और अचारित्र की हो जाएगी, और नुकसान ही नुकसान हो जाएगा, सिद्धांत टूट जाएगा। इसलिए ये भी दो तरह का समझना चाहिए सिद्धांत के। त्रिकाली स्वभाव का अवलंबन लेने योग्य है, ये नीर अपवाद सिद्धांतिक बात है। सिद्धांतिक बात तो है लेकिन नीर अपवाद सिद्धांतिक बात है, ऐसा समझना चाहिए। और उसके सिवा किसी का मैंने संयोग का, देह का, राग का, और एक समय की अपनी पर्याय का, पूर्ण हो या अपूर्ण हो, शुद्ध हो या अशुद्ध हो, किसी पर्याय का भी अवलंबन लेने योग्य नहीं है, ऐसा एक सिद्धांत है अवलंबन के विषय में। अनादि से मिथ्यात्व अवस्था में, अज्ञान अवस्था में अपनी पर्याय का अवलंबन चल रहा है, उसी को ही पर्याय का एकत्व कहते हैं, उसी को ही पर्याय बुद्धि कहते हैं, मिथ्या बुद्धि कहते हैं, मिथ्यात्व कहते हैं। तो अवलंबन तो एक त्रिकाली परम स्वभाव, परम तत्व, परमात्म तत्व है, जो साक्षात जीन स्वरूप ही है, सिद्ध स्वरूप ही है, उसी का ही अवलंबन लेने योग्य है। अवलंबन मैंने आधार लेना, तो नीचे आएगा आश्रय और आधार, वो बात थोड़ी नीचे और स्पष्ट किए हैं, लेकिन यहाँ तो एक सिद्धांतिक बात लेना था, इसलिए अवलंबन के विषय में थोड़ा एक पैराग्राफ छोटा सा अलग ले लिया। एक समय की पर्याय का भी अवलंबन लेने योग्य नहीं, मैं समझता हूँ, मुझे भी कुछ समझ है, मैं बिल्कुल नहीं समझता हूँ ऐसा नहीं है, मैं भी थोड़ा बहुत समझता हूँ। आदि उघाड़ में, परलक्षी उघाड़ में रस रहने से, रस हो जाने से पर्याय का एकत्व छूटता नहीं, पर्याय का अवलंबन छूटता नहीं है, ये पर्याय के अवलंबन का मुमुक्षु की भूमिका में मुख्य कारण रहता है कि पहले वो शास्त्र में माथा नहीं मारता था, अभी शास्त्र में अपना दिमाग चलाने लगा, कुछ बात समझ में भी आने लगी थोड़ी बहुत, तो उसको ये लगता है कि मैं भी समझता हूँ। और समझते हैं तो वहाँ तक समझते हैं कि ज्ञानी की भी नहीं मानता, ज्ञानी तो समझते हैं अपनी आत्मा को, उनकी भी नहीं माने कि ठीक है ज्ञानी तो निश्चय में कुशल है, लेकिन व्यवहार में तो हम पंडित लोग जो है वो कुशल हो गए हैं, या हम मुमुक्षु हैं, अच्छी तरफ शास्त्र पढ़े हैं, बहुत सी बात समझते हैं, तो हम भी जानते हैं, ऐसा हो जाता है। ज्ञानी हो अज्ञानी होकर ज्ञानी का गुरु हो जाता है, ऐसा मैंने अंधा होकर जो देखता है उसको रास्ता बताता है कि तू ऐसे नहीं चल, तू ऐसे चल, खुद तो रास्ता को देखता नहीं है, जो रास्ता को देखता है उसको कहता है कि तू वो रास्ते नहीं चल, तू ऐसा रास्ते चल, ऐसा हो जाता है। ये बड़ी गड़बड़ है, तो ये भी पर्याय का अवलंबन बहुत दृढ़ता से लिया हुआ है, यही कारण से ऐसा होता है जी। हम पुराने हैं, हाँ ऐसा है कि बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई पुराना नहीं है, कोई नया नहीं है, सभी जीवों की आयु अनादि से वर्तमान तक एक सरीखी है, एक समय किसी का ज्यादा नहीं है, एक समय किसी का कम नहीं है। ये बच्चापन बुढ़ापन तो देह की स्थिति है, आत्मा की थोड़ी है, और समझदारी में भी पुराना होवे वो ज्यादा समझे और नया होवे वो कम समझे, ऐसा कभी बनता नहीं है, हमेशा ऐसा हमेशा नहीं बनता, कभी बनता होगा, लेकिन वो कोई सिद्धांतिक बात नहीं है कि जो पुराना होवे वही ज्यादा समझे, जो नया होवे वो कम समझे, ऐसा नहीं है, है? लौकिक में ये कहवत है कि तुम्हारे से ज्यादा हमने दिवाली देखा है, मैंने हम ज्यादा अनुभवी है, तो तुम्हारा अनुभव हमारे से कम है, ऐसा अनुभवी लोग बोलते हैं, वो लौकिक अनुभव की बात है, यहाँ ऐसा नहीं है, विद्या में ऐसा होता ही नहीं, विद्या में ऐसा नहीं होता, बड़ी उम्र वाला फेल होता है, छोटी उम्र वाला पास हो जाता है, क्योंकि ज्ञान और देह की उम्र में संबंध नहीं है, देह और आत्मा भिन्न भिन्न होने से देह के अनुसार ज्ञान की स्थिति नहीं है, देह तंदुरुस्त होने से ज्ञान तंदुरुस्त हो गए ऐसा नहीं बनता, देह क्रश होने से ज्ञान क्रश हो जावे ऐसा नहीं बनता, देह तगड़ा हो जाने से ज्ञान तगड़ा हो जावे ऐसा नहीं बनता, देह क्रश होवे और मति बहुत तगड़ी होवे, तेज बुद्धि होवे, और देह तगड़ा होवे और मति स्थूल होवे, बिल्कुल कम बुद्धि वाला भी हो सकता है, स्थूल बुद्धि वाला हो सकता है, ये देह और आत्मा की भिन्नता होने से वो साथ में नहीं चलता, और समय से भी उसकी पाबंदी नहीं है कि समय ज्यादा पड़ा इसलिए ज्यादा समझे, ऐसा नहीं है, कोई थोड़े काल में ज्यादा ज्ञान लेते हैं, कोई ज्यादा काल में थोड़ा ज्ञान भी लेता है, ऐसा होता है। ठीक है धीरू भाई, एक बेहतर कैरेक फेंके से हम तो एमने ख्याल हो चोखट करावी हो કામ ઘણા હોય છે શું કરવું ઈ એમનું પોતાનું લાગે છે હે ઈ પોતાનું લાગે છે શું કરીએ કામ ઘણા છે જો કે એમને તો બધા ઉકલી ગયા છે હવે કઈ પ્રશ્ન નથી હે પણ તો પ્રશ્ન ઉભરી ગયો છે દીકરા દીકરી વરાવવાના બાકી હોય અને જલ્દી પત્તો ન લાગતો હોય તો પછી આ કરવું કે એ કરવું, આમ પ્રશ્ન એ આવે છે, પહેલા એ કરવું કે પહેલા આ કરવું? સિદ્ધાંત તો એ કે પહેલે આત્મહિત કરના, એ સિદ્ધાંત. પણ આત્મહિત કરતે કરતે ઉદય કે કાર્ય કરને પડે, કરના નહીં હૈ લેકિન કરના પડે તો ઠીક હૈ, જૈસા પૂર્વ કર્મ કા ઉદય હોગા વૈસા હોતા રહેગા, એસા સમજ મેં રખ કરકે, એસા અભિપ્રાય રખ કરકે મન મેં જો ભી હોવે ઉસમેં કોઈ જ્યાદા સિરફોડી નહીં કરના, જ્યાદા આકુલિત નહીં હોના, જો ભી હોવે ઉસમેં જાન લેના કે ઠીક હૈ એસા હી હોને યોગ્ય થા તો એસા હી હુઆ. હમારે હમારે તો પર પદાર્થ મેં હમારી ચલને વાલી કહાં હૈ કે ચલેગી, કોઈ હમારી વૃત્તિ છે હમારા વિકલ્પ કે અનુસાર કામ હો જાવે એ તો વસ્તુ કે સ્વરૂપ મેં હૈ નહીં. છ નંબર કા બોલ, પર્યાય કા આશ્રય ઓર પર્યાય કા આધાર, દોનો એક હી વાત હૈ. આધાર કહો યા આશ્રય કહો, એસે તો અવલંબન ભી એક હી અર્થ મેં જાતા હૈ, લેકિન થોડા ભંગભેદ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકાર કે પરિણામ મેં આતા હૈ તો કિસ કિસ તરહ હો જાતા હૈ. કે યદ્યપિ કાર્ય માત્ર વસ્તુ કા પર્યાય અંગ મેં હોતા હૈ, જો ભી કાર્ય હોતા હૈ જડ હો યા ચેતન હો, પરિણામ કહો કાર્ય કહો, વો પર્યાય અંગ મેં હી હોતા હૈ. મેં વસ્તુ કે દો અંગ હૈ, એક સામાન્ય ત્રિકાલિક સ્વભાવ હૈ ઓર એક વિશેષ પરિણમિત પર્યાય અંગ હૈ, તો હંમેશા કાર્ય તો વસ્તુ કે પર્યાય અંગ મેં હોગા, ત્રિકાલી અંશ મેં કાર્ય હોને કા સવાલ નહીં. અત દોષ કા અભાવ હોના ઓર ગુણ કા પ્રગટ હોના એસા જો પ્રયોજનભૂત કાર્ય વો પર્યાય મેં હોતા હૈ. કાર્ય કા વિભાગ, કાર્ય કા જો ડિવિઝન હૈ વો પર્યાય મેં હૈ, ઇસલિયે અવગુણ કા નાશ હોના, દોષ કા નાશ હોના, ગુણ કા પ્રગટ હોના એ ભી પર્યાય મેં હોગા ઓર પર્યાય મેં હોતા હૈ. ઓર પ્રયોજન કે કારણ સે ભી જીવ કા વજન જોર પર્યાય ઉપર રહેતા હૈ. ક્યા હુઆ કે જબ જીવ સાંસારિક કાર્યો સે કુછ નિવૃત્તિ લેકર, કુછ યા જ્યાદા થોડી બહોત નિવૃત્તિ લેકર ધર્મ કે ક્ષેત્ર મેં પ્રવૃત્તિ કરતા હૈ, તો ઉસકા એક અભિગમ હોતા હૈ કે મેરા દોષ મુજે મિટાના હૈ ઓર મુજે મેરે ગુણ કી પ્રાપ્તિ કરની હૈ. યે સહી પ્રયોજન જિસકો હૈ ઉસકી બાત હૈ. જિસકો કોઈ દૂસરા પ્રયોજન હોવે વો તો ધર્મ કે ક્ષેત્ર મેં આયા હી નહીં, ઉસને તો એક વેપાર કા ક્ષેત્ર છોડ કરકે દૂસરે વેપાર કા ક્ષેત્ર કા ગ્રહણ કર લિયા હૈ. જૈસે કોઈ આર્થિક પ્રયોજન સે આવે, કોઈ માનાદિક કે પ્રયોજન સે આવે, યા કોઈ અપને કૌટુંબિક વ્યવહારિક પ્રયોજન સે આવે કે ભાઈ અપની સમસ્યા સુલઝેગી, અપને સંબંધ બઢેગે એસે એસે લોગો સે, યે સમાજ મેં ગુરુદેવ કે સમાજ મેં પૈસે વાલે લોગ, સમાજ કે ઉપર કે સ્તર કે લોગ જ્યાદા હૈ, હમારે સંબંધ બઢેંગે, પહેચાન બઢેંગી, કુછ કામ હોગા તો હમારા બન જાયેગા, એસે કોઈ આત્મહિત કે સિવા અન્ય હેતુ સે ઇસ ક્ષેત્ર મેં આતા હૈ રહેતા હૈ, કે દોનો યે બાત એક વ્યાપાર વૃદ્ધિ કી હોતી હૈ, દુકાનદારી કી હોતી હૈ, ઉસમેં ધાર્મિક પ્રયોજન હુઆ હી નહીં, ધાર્મિક પ્રયોજન રહા હી નહીં, તો ઉસકો તો છોડ દેતે હૈ. દુકાન એક છોડ કરકે એક બંધ કર દી, દૂસરી ચાલુ કર દી, એસા હુઆ તો ઇસકો તો છોડ દે, લેકિન જો આત્મહિત કા પ્રયોજન લેકર કે આતા હૈ गुण का प्रकट करना, दोष का अभाव करना, ऐसा जो प्रयोजन है, ऐसा प्रयोजन के कारण से, प्रयोजन के हेतु से, पर पर्याय में ये प्रयोजन की सिद्धि होती है, इसलिए पर्याय पर भजन चाहता है और पर्याय पर भजन रहता है, वहां अनादि पर्याय का एकत्व की स्थिति और मजबूत हो जाती है। देखिए क्या नुकसान है इसमें, ये बात ध्यान बार ध्यान में नहीं रहती कि हमारे हमको गुण प्रकट करना और दोष का नाश करना, ये तो पारमार्थिक बात है, ये तो पारमार्थिक प्रयोजन है, ये कोई लौकिक प्रयोजन तो है नहीं। तो पारमार्थिक प्रयोजन वाले को नुकसान होवे क्या, हो सकता है क्या, दूसरा प्रश्न यहाँ उठा सकते हैं, एक तर्क कर सकते हैं कि जिसको लौकिक प्रयोजन नहीं होवे और जिसको अपारमार्थिक प्रयोजन होवे उसी को भी नुकसान हो जाए, ऐसा बन सकता है क्या? तो क्या पारमार्थिक प्रयोजन में भी भूल रहवे ऐसी संभावना है, यहाँ तो ये संभवित भूल नहीं होवे उसी की चर्चा हम करते हैं। उसमें एक बात और स्पष्ट करनी जरूरी है कि जिसको पारमार्थिक प्रयोजन तीव्रता से है वो प्राय भूल में नहीं रहते, लेकिन जिसको पारमार्थिक प्रयोजन भी ऊपर ऊपर से करने की वृत्ति है, ऐसा ऊपर ऊपर का भाव है, वो भूल में रह जाते हैं। क्योंकि जिसको तीव्र वृत्ति है कि हमें पारमार्थिक हित होना ही चाहिए, इस तीव्र वृत्ति में एक सावधानी ज्ञान की पैदा होती है, ज्ञान की एक जागृति, ज्ञान की एक सावधानी का एक प्रकार होता है ज्ञान में, ये इसमें आखिरी प्रकरण में लिया है, ज्ञान में सावधानी होना, जागृति होना। तो उसमें क्या होता है कि वो जांच करता रहता है कि कहीं कोई रास्ते में, कोई विधि में, कोई कार्य पद्धति में कोई भूल तो नहीं, और ये सही पद्धति है कि नहीं है, जिससे हमें लाभ लेना है, जिस कार्य पद्धति से हमें लाभ लेना है वो पद्धति सही है कि नहीं है, उसको ये पूरी पूरी गहराई में जाकर के जो पद्धति ठीक होगी, सम्यक होगी, समीचीन होगी, उसको ही ग्रहण करेगा। और ऊपर ऊपर से चलने वाला को ये बात जो है भूल में चली जाती है, वो तो एक विचार करता है, जैसे द्रविलिंगी में ये ऊपर ऊपर वाली बात है कि हम तो पारमार्थिक प्रयोजन से दीक्षा लिया है, हमने राजपाट छोड़ा, सब छोड़ा, यही कारण कि हमको आत्मा का हित करना है, और ऐसे ऊपर ऊपर से हमारे जीव ने भी ऐसा द्रविलिंग धारण किया है अनंत वेद, और हमने धार्मिक प्रवृत्ति अनंत बार किया है, ऊपर ऊपर से ऐसा पारमार्थिक प्रयोजन को सोच करके, तो उसमें भूल रह जाएगी। इसलिए ये दो बात में कहाँ फर्क पड़ता है, वरना ये प्रश्न होता है कि पारमार्थिक प्रयोजन वाले को तो भूल होनी नहीं चाहिए, अगर इसकी भी भूल होती है तो फिर कोई इलाज नहीं है इस बात का, या नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसका इलाज है। जिसको पारमार्थिक प्रयोजन और प्रयोजन की बुद्धि तीक्ष्ण और सूक्ष्म होती है उसको भूल नहीं होती है। इंद्रधान दर्शन में लिया है मुमुक्षों को प्रयोजन की तीक्ष्ण और सूक्ष्म बुद्धि होती है, तो उसको भूल नहीं होती है, और जो ऊपर ऊपर से चलता है उसकी सूक्ष्मता में नहीं जाएगा, उसको इस प्रकार की तीक्ष्णता नहीं रहेगी, तो पारमार्थिक प्रयोजन होने पर भी वो भूल में रह जाएगा, अवश्य भूल में रह जाएगा। ऐसा दो प्रकार पारमार्थिक प्रयोजन में भी रहता है, तो जो ऊपर ऊपर वाला है ऐसा नहीं होना चाहिए, और सूक्ष्म और तीक्ष्ण प्रयोजन की दृष्टि से ही इस मार्ग में आने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि प्रयोजन के कारण से भी पर्याय पर वजन रहता है, वहाँ पर्याय का जो एकत्व है वो दृढ़ हो जाता है। इसलिए प्रयोजन के कारण से भी वहाँ जोर नहीं जाना चाहिए, एक जानने का विषय है। प्रयोजन भी एक जानने का विषय है, जोर देने का नहीं है, वो तलाश करने का विषय है। इसके लिए एक दृष्टांत देते हैं कि जैसे छरी चाकू है, उसको हम सराहन पर धार निकालते हैं, या कोई पत्थर पर घिस करके धार निकालते हैं, तो जब घिसते हैं तब तो जोर से घिसते हैं, लेकिन जब इसकी धार को टेस्ट करते हैं, तलाश करते हैं कि धार निकली कि नहीं निकली, निकली तो कितनी निकली, तो उसमें मामूली मृदु स्पर्श करना पड़ता है। अगर इससे जोर से स्पर्श करे तो उंगली कट जाएगी। तो उंगली कट जाएगी, इससे प्रयोजन तो बेकार हो गया, नुकसान हो गया बड़ा। धार निकालना तो मामूली बात है, नुकसान बड़ा हो गया। उसमें ऐसा गुण दोष का प्रयोजन बस पर्याय पर वजन चला गया, थोड़ा कषाय मंद हो जाएगा, अशुभ थोड़ा घटेगा, शुभ बढ़ेगा, ऐसा तो हो जाएगा, लेकिन मिथ्यात्व दृढ़ हो जाएगा। ये बात बनती है। इसलिए पर्याय का एकत्व की स्थिति और दृढ़ हो जाती है। परंतु त्रिकाली द्रव्य स्वभाव का आश्रय होते ही उक्त प्रयोजनभूत कार्य सधने लगता है। त्रिकाली द्रव्य स्वभाव का आश्रय होते ही अवगुण का पैदा होना ही बंद हो जाता है, जिसको अवगुण का नाश कहते हैं, और गुण प्रकट हो जाते होने लगते हैं। तो ऐसा जो प्रयोजन है वो स्वतः सिद्ध हो जाता है, उसकी स्वयं सिद्धि हो जाती है, करना नहीं पड़ता, और यही प्रयोजन सिद्धि का विज्ञान है, यही सही कार्य पद्धति है। ऐसी कार्य पद्धति को हम नहीं समझे, इसलिए ये सिद्धांत दिया है। जो कुंदकुंद आचार्य देव ने ये सिद्धांत दिया कि सम्यक दृष्टि ही द्रव्य दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है, अपने सोनगढ़ के स्वाध्याय मंदिर में ये बड़ा चाकड़ा है दीवाल पर, बड़े बड़े अक्षर में लिखा है, द्रव्य दृष्टि ही सम्यक दृष्टि। और यही आचार्य देव ने प्रवचन सार में दिया, पर्याय मुंडा पर समया, जो पर्याय में मुंड है वो पर समय, मैंने जैन मत की बाहर है, पर समय अन्य मत को पर समय कहते हैं। परंतु त्रिकाली द्रव्य स्वभाव के आश्रय होते ही उक्त प्रयोजनभूत कार्य सत्ता है, उसको भूल करके, ये मिथ्यात है सो भूल है, ऐसी कार्य पद्धति को भूल जाने से पर्याय के आधार से पर्याय का कार्य साधने का, पर्याय आश्रित कृत्रिम पुरुषार्थ का विकल्प रहा करता है। क्या कैसा होता है मुमुक्षु को कि पर्याय का वो आधार लेते हैं, क्योंकि कार्य पर्याय में होता है, और पर्याय में कार्य साधने का पर्याय आश्रित ही वो प्रयत्न करता रहता है, वो कृत्रिम प्रयत्न। ऐसा प्रयत्न कभी सफल होता नहीं है। जैसे स्वसंवेदन पर्याय में होता है, लेकिन त्रिकाली द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य और आश्रय नहीं होवे, उसको स्वसंवेदन होता ही नहीं आविर्भूत। ये इस बात का जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि समय सार की 15 गाथा में सामान्य का आविर्भाव करने से और विशेष का तिरोभाव करने से, ऐसा करने से शब्द पड़ा है, लेकिन दोनों होने से ऐसा लेना चाहिए, स्वानुभव होता है, शुद्धोपयोग होता है। लेकिन वहां यह बात गर्भित है या अध्याहार है, अंडरस्टूड जिसको कहते हैं, कि वहां त्रिकाली का आश्रय लिया हुआ है, त्रिकाली लक्ष्य में है, उसकी वो बात है। जिसको त्रिकाली का लक्ष्य नहीं हुआ, उसको सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव होने का सवाल ही बनता नहीं। पर्याय में कितना भी प्रयास करे, कृत्रिम नहीं चलेगा, ये प्रयास काम होने वाला ही नहीं है। भेद ज्ञान भी पर्याय में होता है, और इस तरह भेद ज्ञान करना, ऐसे भेद ज्ञान करना, ये बात चलेगी विधि के विषय में, विधि के प्रकरण में चला। विधि तो विषय ही पर्याय का है, क्योंकि पर्याय में विधि होती है। तो किस तरह की विधि सही है और किस तरह की कार्य पद्धति सही नहीं है, इसकी चर्चा तो उसी प्रकरण में चलेगी। फिर भी पर्याय का आश्रय नहीं लेने का ये सिद्धांत अबाधित है और निरपवाद सिद्धांत है, उसमें अपवाद नहीं है, सो नहीं है, ऐसी बात है। ये जरा विषय ही सूक्ष्म है, पर्याय का आश्रय हो जाता है भूल से, और वजन रहता है, जहां तक पर्याय पर वजन रहता है, द्रव्य स्वभाव पर वजन आता ही नहीं, ऐसा हो जाता है। इसलिए सबसे पहले पहचान की बात ली, कि तू सबसे पहले स्वभाव की पहचान कर, स्वभाव का निर्णय कर। जो तुझे स्वभाव की पहचान आ जाएगी तो वो उतना महान है, उतना महान है कि तेरा सारा वजन उस पर चला जाएगा, लक्ष्य माँ हो जाएगा। ये लक्ष्य माँ होने से फिर सब काम ठीक हो रहेगा, कार्य पद्धति समीचीन हो जाएगी, विधि में भूल नहीं रहेगी। अगर पहचान नहीं हुई तो पर्याय आश्रित कार्य करने का जो अनादि का प्रयत्न है, वही प्रयत्न किसी न किसी प्रकार से चालू रह जाएगा, उसमें मिथ्यात्व और पर्याय बुद्धि दृढ़ हो जाएगी और द्रव्य से दूर हो जाएगा, ये बात हो जाएगी। इसी कारण से शुरू में पर्याय में स्वानुभव करना है, तो इसको कारण निर्णय लेने का यही कारण है कि पहले निर्णय करो, जिसका कारण ये स्वानुभूति है। 144 में प्रथम तो निर्णय करना, ये बात इसी कारण से लिया है, वरना स्वानुभव की बात जो है वो पर्याय आश्रित करने का प्रयत्न चालू रह जाएगा तो मिथ्यात्व दृढ़ हो जाएगा। ये लांबी है, टूकी है, जो यही है सो है, और अपनी भूल है तो कहाँ है, भूल कहाँ है वो समझने की बात है। पर्याय आश्रित भूल होती है, ये बात तो समझनी ही पड़ेगी, समझे बिना भूल निकलने वाली नहीं है। स्वमावस